हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमन सिंह और आप सुन रहे हैं मिस्टर टॉकी टॉक शो, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शो ओनली ऑन एफएम डाउनटाउन, ब्रॉट टू यू बाय प्रिंटेबिलिटी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कितना कूल लगता है ना ये वर्ड, और शायद हाँ भी। आज मेरे साथ मिस्टर टॉकी टॉक शो पर मेरे साथ हैं मोस्ट हैंडसम एंड चार्मिंग गाय आई एवर न्यू, ऋतिक महाजन। ऋतिक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक यूट्यूबर हैं। ऋतिक ने टिकटॉक पर एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग तैयार की थी और अब इंस्टाग्राम पर ऋतिक के 65,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। व्लॉगिंग, रील्स एंड मैनी मोर्स ऋतिक के स्पेशलिटीज़ हैं। इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको ऋतिक से बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं कि हमारा फेवरेट सॉन्ग इसलिए हमारा फेवरेट होता है क्योंकि उसके पीछे हमारी एक मेमोरी जुड़ी होती है, और वो मेमोरी ही क्या जो हमारे दीवार पे ना हो, है कि नहीं। तो आज ही अपने फेवरेट सॉन्ग को दीजिए एक ब्यूटीफुल ग्लास प्रिंटिंग फ्रेम का रूप, वो भी आपके फोटो के साथ, और हाँ, सबसे अफोर्डेबल रेट्स में। पर यह सब मिलेगा कहाँ? वहीं जहाँ से सब लेते हैं, प्रिंटेबिलिटी। प्रिंटेबिलिटी के इंस्टाग्राम पेज पर आपको इसके अलावा मिलेंगे पोस्टर्स, प्रिंटेड टैग्स और कस्टमाइजेबल स्टिकर्स और भी बहुत कुछ। तो अभी जाइए प्रिंटेबिलिटी के इंस्टाग्राम पेज printability.co और वहां पे ऑर्डर कीजिए अपना फेवरेट सॉन्ग का फेवरेट ग्लास प्रिंटिंग फ्रेम। और हाँ, इसे आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और शॉपिंग करें प्रिंटेबिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और मेरे साथ हैं आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर ऋतिक महाजन। ऋतिक, वेरी वेरी वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू सो मच अपने शो पे बुलाने के लिए।
सो ऋतिक, कैसे हैं आप?
मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
मैं भी बिल्कुल बढ़िया। और पैंडेमिक में आपका सब कुछ कैसे चल रहा है?
वही सब आलसी हो जाते हैं इसमें तो। आपका भी सेम ही होगा आई गेस।
एक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। सो ऋतिक, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सब जानना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुआ ये जर्नी, लाइक स्टार्टिंग से लेकर के और अब तक आपने जो भी आपने इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग अर्न की है, वो सब कुछ कैसे शुरू हुआ?
तो ये शुरू हुआ है 10th क्लास से, जहाँ मैं बहुत हेल्दी बच्चा हुआ करता था क्योंकि छोटे होते हुए होता है ना ऐसे कि मतलब पेरेंट्स खिला पिला के कुछ ज़्यादा ही मोटा कर देते हैं। तो वैसे ही कहानी है कुछ कि मैं काफ़ी हेल्दी था और इस हेल्दी की वजह से ही मेरी सारी ये कहानी शुरू हुई है, जिसमें मतलब बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बुली भी करा मुझे कि तू इतना मोटा है, ये है। अच्छा। जो भी आपको पता होगा कैसे रहता है।
जी जी बिल्कुल।
तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब, जहाँ मुझे मैं खुद को खो चुका था कि मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को आगे क्या करना है या क्या, जैसे होता है ना एक पर्टिकुलर माइंड सेट बन जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे मेरे को 2-3 बच्चे थे क्लास के जो सपोर्ट करते थे कि नहीं ऋतिक तू ठीक है जैसा भी है, बट अंदर से अगर आपके खिलाफ 28 बच्चे हों तो आप क्या ही सोचोगे कि मैं कुछ नहीं हूँ। देन उसके बाद ये सब स्टार्ट हुआ 11th, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा 11th से स्टार्ट हुआ, जब मेरा स्कूल ही शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि मेरे को स्कूल ही शिफ्ट करना पड़ गया।
ओके।
तो स्कूल शिफ्ट करने के बाद जो प्रिंसिपल थे वो मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो आई वॉज फीलिंग वेरी सिक्योर बैक देन। तो उनके जो बच्चे थे वो भी मेरी क्लास में ही थे प्रिंसिपल के।
ओके।
तो बहुत मज़ा आया था, वो 2 साल मेरे बहुत अच्छे से गए। उसी बीच में मैंने YouTube स्टार्ट करी अपनी। मैं पहले ऋतिक टेक नाम का चैनल चलाता था।
अच्छा।
हाँ जी। तो उसमें मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाता था, फ़ोन की, कैमरा की, ये सब चीज़ें करता होता था।
ओके।
तो ये चीज़ें बहुत मेरे को टेक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है।
ओ।
एंड अभी भी बहुत ज़्यादा शौक है मुझे ये सब चीज़ों का, बट स्टिल अभी मैं लाइफ के रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें शेयर करना पसंद करता हूँ और मोटिवेशन ज़्यादा रखता हूँ। बाकी वहाँ से फिर मेरा मेन जो था ये सफ़र या जर्नी स्टार्ट हुई है। देन 12th में थोड़ा सा बूस्टअप हो गया था मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगने लगा था कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब बाकी ज़्यादा हेट करने लग गए मुझे तो मुझे लगा नहीं मैं लिटरली कुछ कर रहा हूँ, तभी कुछ हेट आ रही है।
बिल्कुल।
तो वहाँ से फिर मैं आया अपने कॉलेज में, तो कॉलेज में मैंने जिम स्टार्ट कर दी, तो मेरी फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लग गई वहाँ से। और मैंने ये सब चिप्स वगैरह, हेल्दी चीज़ें, ये सब मतलब चिप्स छोड़ के, अनहेल्दी फूड छोड़ के हेल्दी चीज़ें खाना शुरू कर दी। थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा वहाँ से, तो चेंज हो गई लुक थोड़ी। और फिर उसके बाद ज़्यादा थोड़ा पब्लिक ने बहुत पसंद करा। देन
बिल्कुल
टिकटॉक पे थोड़े फॉलोअर्स हो गए थे, आई गेस 28,000 करके कुछ हुए थे, तो
वाह
बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। बट उसके बाद मेरे को ये भी इनफ नहीं लगा, तो मैंने और ज़्यादा मेहनत करी है। और उसके बाद 1 मिलियन पहुंचा था टिकटॉक पे, वैसे तो लाइक्स पहुंचा था 1 मिलियन, और
आई
फॉलोअर्स
नो
फॉलोअर्स मेरे आई डोंट नो, अभी तो याद भी नहीं है कितने पहुंचा था मैं। और फिर उसके बाद एक दिन आया कि टिकटॉक बंद हो गया,
हाँ
तो मेरे फ्रेंड्स तो बहुत खुश हुए।
अच्छा
हाँ, उनको वो तो ऐसे कह रहे थे कि भाई अच्छा हुआ तेरा ये बंद हो गया। तो मैंने
ऐसा
कहा यार
क्यों?
वही हेट, ये सब फ्रेंड्स नाम के ही होते हैं आजकल, अपने बस अपने ही होते हैं, जो पेरेंट्स हैं और जो
वो तो आपने
आपके,
बिल्कुल सही कहा,
और दुनिया में कोई किसी का नहीं है।
किसी का नहीं है।
बाकी उसके बाद फिर ये रील स्टार्ट हो गया। देन टच वुड, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से और ये सब जो मेरे आसपास हैं, मैंने दोबारा स्टार्ट करा। मैंने बोला चलो एक चांस और देते हैं। देन बहुत प्यारा रिस्पांस आया पब्लिक का, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि बहुत सारे गिफ्ट्स आए। इस लॉकडाउन में मैंने बहुत ग्रो करा, बहुत सारे गिफ्ट्स आए। उसके बाद बहुत सारे केक्स भी आए मुझे, 15K पे केक आया था, मेरे बर्थडे पे केक आया था, बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ ये सब जो भी हुआ है ना। देन मैंने जब कॉलेज, यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था जब ये स्टार्ट किया था यहाँ पे, यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया था, मैंने अपना ये छोड़ दिया कॉलेज और मैं चंडीगढ़ चले गया वहाँ से।
अच्छा
बिकॉज़ यहाँ पे स्टडी का ना थोड़ा स्कोप कम है, तो आई थॉट कि कहीं बड़ी जगह से पढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, मैं मिस्टर फ्रेशर बना, मॉडलिंग
हाँ
सीखी, सब करा वहाँ पे जो इंटरेस्ट था मेरा। और आज जहाँ भी हूँ जो भी हूँ मेहनत करके ही हूँ।
बिल्कुल
तो ये थी स्टोरी सारी।
ओके। सो ऋतिक, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि जब आप टिकटॉक पे आने से पहले पहले यूट्यूब पे थे, उसके बाद टिकटॉक पे आ पाए।
हाँ जी,
हाँ, तो जब टिकटॉक जिस दिन बैन हुआ, उस दिन आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? लाइक करीब 7:30 बजे या 8 बजे रात में, मैं खुद उस वक्त न्यूज़ पे था, मैं खुद न्यूज़ देख रहा था बैठ करके, एंड देन आई थॉट कि मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई नीचे कि गवर्नमेंट ने 63 आई थिंक चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया, और जिसके अंदर टिकटॉक का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो उस वक्त आपका पहला रिएक्शन क्या था?
पहला रिएक्शन मेरा ये था कि अपनी फैन फॉलोइंग को इंस्टाग्राम पे लाना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब,
बिल्कुल
क्योंकि लोग नहीं करते फॉलो जब तक वो कोई क्वालिटी ना देखें और ये सब।
हाँ
तो वहाँ से मैंने रात को लाइव जाना स्टार्ट कर दिया, कि टिकटॉक पे जाके लाइव पे बोलता था कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, नहीं तो आपको मैं कभी नहीं दिखूंगा, बिकॉज़ लोगों को नाम याद नहीं रहते।
नहीं रहते बिल्कुल
तो वहाँ से थोड़ा आई गेस लोगों ने फॉलो कर लिया था, लोगों को थोड़ा पता लग गया था। एक मेरी वीडियो थी चाय वाली जो बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे।
वो वीडियो मैंने भी पहले देखी थी, जिस दिन आपने टिकटॉक पे अपलोड की थी
हाँ जी, हाँ
वो
जी,
वीडियो मैंने भी देखी थी, जो आपने नीचे कैप्शन था कि व्हेन यू आर चेकिंग आउट एंड योर मॉम वॉचेज यू,
हाँ जी, हाँ जी,
सो
बिल्कुल।
वो वीडियोस मैंने भी आपके पहले देखी थी।
तो वो
अच्छा,
वीडियो से, हाँ हाँ
वो
हाँ
आपकी वीडियो मोस्ट वायरल वीडियो
हाँ
थी।
जी।
ओके
तो वहाँ से थोड़ा सा मिला था फैन फॉलोइंग सपोर्ट जो भी था। बाकी फिर उसके बाद टिकटॉक बंद होने के बाद काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इंस्टाग्राम पे। और मेरा जो रिएक्शन था जब लास्ट में इन्होंने बोला कि सही में बंद हो रहा है, तो मेरे लिटरली आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी मैंने।
बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लगता है, कोई चांसेस, क्योंकि र्यूमर्स तो अभी भी उठ रहे हैं कि टिकटॉक वापस आ सकता है बाय द कोलैबोरेशंस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो अभी आपको क्या लगता है?
मेरे को अब लिटरली टिकटॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। आई नो वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस बैठी है जो आपको सपोर्ट कर सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है अब बंद हो गया तो ठीक है, फालतू के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी पता होगा क्रिंजी कंटेंट जो बनाते
बिल्कुल.
हैं, वो उनको फालतू में सपोर्ट मिल रहा था और जो टैलेंट है वो दब रहा था.
मैं तो नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिंजी क्रिएटर्स थे जो आज भी, अब खैर टिकटॉक बंद होने के बाद भी वो इंस्टाग्राम पे हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग अगर आप देख लें तो छोड़ी क्या ही कहना उसके बारे में.
किसी के लिए हेट नहीं है, बस ये है कि अगर आप किसी को कुछ सिखा सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते तो प्लीज रहने दो, जितनी नॉलेज है अपने तक ही रखो,
अपने तक रखो, किसी का टाइम वेस्ट करना अच्छी चीज नहीं होती है.
जी
ओके ऋतिक, सो आप लोगों को देख करके, आप जैसे बड़े क्रिएटर्स को देख करके जिनके फॉलोअर्स मोर देन 50,000 हैं, 1 लाख हैं, 5 लाख हैं, तो उन लोगों को देख करके जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है मन में कि हम भी कैसे शुरू कर सकते हैं. तो आप अगर कोई टिप शेयर करना चाहें न्यू क्रिएटर्स के साथ जो अभी शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो क्या टिप्स होंगी?
इसमें टिप तो कुछ नहीं है, बस इसमें यह है कि आपको रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए, और ये नहीं है कि अगर आपके पास 1,000 फॉलोअर्स हैं तो आपको अकड़ आ जाए बीच में कि नहीं मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, मैं तो मानूंगा नहीं अब इसके बाद. बस मेरा ये सोचना है कि प्लीज़ हम्बल रहो, अगर कोई आपको प्यार से जी करके बुला रहा है तो उसको जी करके जवाब दो,
जी,
ताकि आपका जो इंटरेक्शन है और या आपकी जो इमेज है वो अच्छी बनना शुरू हो लोगों के आगे, और लोगों को लगे नहीं यार इंसान अच्छा है. फेक मत करो कुछ, रियलिटी रखो सब. बस यही है टिप.
और इस इंडस्ट्री के अंदर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री के अंदर, सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या होती हैं जो एक नए क्रिएटर्स करते हैं?
सबसे बड़ी मिस्टेक है लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है उनके फ्रेंड्स आके उनको डिमोटिवेट करेंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो ऑब्वियसली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके फ्रेंड्स ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं. तो अगर आप स्टार्टिंग में ही लड़खड़ा जाओगे तो आई गेस आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे.
और एक चीज़ ऋतिक, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जब हम इनका नाम सुनते हैं या फिर कोई भी एक बंदा जब इनका नाम सुनता है तो उसके मन में ये चीज़ आती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं. सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या होती है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस इस चीज़ के अंदर कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कितना अर्न करते हैं, अगर आप कुछ बता सकें तो?
लोगों को तो लगता है मैं पता नहीं कितने लाखों रुपए कमा रहा हूँ घर बैठे बैठे. लिटरली मेरे को कभी कभी हंसी आ जाती है, क्योंकि जब लोग पूछते हैं ना भाई तू इतनी महंगी चीज़ें कैसे ले रहा है, ये सब कैसे कर रहा है, तो उस प्यारी सी चीज़ का नाम होता है सेविंग्स, जो कि बहुत लोग करते भी हैं. अगर आपको लगता है कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ या बाकी क्रिएटर लाखों में कमा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. इवन कि हम अगर किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है, बहुत बार वो वीडियो शूट्स करवाते हैं कि भाई ये चीज़ सही करो वो चीज़ सही करो, जबकि वो चीज़ सही भी हो उनको. वो बिल्कुल बोलते हैं ना, इस इंडस्ट्री में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पैसे ही लैक कर जाते हैं कहीं ना कहीं. हो सकता है आपने अपना कंटेंट लाखों रुपए का बनाया हो और आपको उसके मिले कितने, बस 5,000 रुपये. तो इसमें, इस इंडस्ट्री में पैसा है, बट बहुत ऊपर लेवल पे जाकर पैसा है. अगर मेरे जैसे 100K, 600K वाले जितने भी हैं, इन सब यहाँ तक कोई पैसा नहीं है, खुद से आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, जा भी मारे.
ओके, लाइक 1 मिलियन जब तक आप ना टच करो तब तक आप उतना एक्सपेक्टेशंस मत रखो. तो क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इसको हम फुल टाइम जॉब की तरह देख सकते हैं, एक ऑप्शन?
हाँ देख सकते हो इसको एज एन ऑप्शन देख सकते हो, बट मेरे जो माइंड में इस टाइम पे है वो ये है कि अगर आपके पास कोई बैकअप है जब तक, तब तक आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. कल को आप कहीं डाउन चले गए सोशल मीडिया पे, तो आप तो गए, आपके पास क्योंकि बैकअप ही नहीं है कोई, तो आप घर पे खाओगे क्या? तो मेरी माननी है तो भाई पहले कोई बैकअप क्रिएट करो. जैसे मेरी स्टडीज चल रही हैं साथ में, मेरा बिजनेस है और मैं तो ये मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए रखा है ये सब चीज़. एज अ परमानेंट थिंग ये मैं बाद में देखूंगा, अगर मैं ज़्यादा बड़ा बन गया या ज़्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग बन गई मेरी कहीं ना कहीं,
जो कि होगी.
आप बोल रहे तो होगी पक्का, लेकिन अगर हुई तो हम पक्का इसको ऐसे एज एन परमानेंट जॉब ज़रूर लेंगे,
ऑप्शन रखेंगे. मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एक बैकअप प्लान ले करके चलना है.
जी
ओके, सो हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक जॉब प्रोफाइल के अंदर एक कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है?
इसमें मेरे को बस एक ही चीज़ पसंद है कि लोग आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर ब्रांड्स आते हैं तो वो आपको ऑफ़र करते हैं कुछ। और जो चीज़ें नहीं पसंद वो है हेट कमेंट्स, गालियाँ, और अगर आप कुछ अलग दिख रहे हो उसके ऊपर जजमेंट पास करना, ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। मेरे जैसों को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत एक गंदी सी लाइन से उठकर यहाँ तक पहुँचा हूँ।
बिल्कुल,
बुलिंग हो चुकी है, सब हो चुका है, तो अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग न्यू हैं, बट उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज
क्योंकि वो तुरंत डीमोटिवेट हो
जी
जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मोटा है तो अगर आप उसको मोटा बोलोगे तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, कहीं ना कहीं।
बिल्कुल,
अगर वो खा रहा है, अपने घर में खा रहा है यार, आपका कुछ नहीं खा रहा, तो आई गेस आपको उसे इतना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए।
तो यही है बस इसमें।
तो हेटर्स के लिए क्या कहेंगे?
हेटर्स के लिए, उनको भी यार मेरा बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि अगर हेटर्स ना हो ना तो लाइफ में कुछ अचीव करने का मन ही नहीं करता।
मन ही नहीं करता, बिल्कुल सही कहा आपने।
क्योंकि सपोर्टर्स जब इतने ज़्यादा बैठे हैं, उनके लिए वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, अब मैं किसको प्रूव करूँ कि भाई मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ? हेटर्स को। तो हेटर्स के लिए भी मेरी तरफ से एक छोटा सा आई लव यू।
सो ऑल द हेटर्स, अगर आप इसे सुन रहे हैं, मुझे पता है आप सीक्रेटली जरूर सुनेंगे, तो ऋतिक ने आपको आई लव यू बोला है, मतलब आप और अच्छे से हेट करते रहिए और ऋतिक को और मोटिवेट करते रहिए
जी।
सो लिसनर्स, यहाँ पे ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद अगला जो सेक्शन हम ऋतिक के साथ करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। दैट इज़ द फन सेक्शन विथ डाउनटाउन्स रैपिड फायर। सो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सुनते रहिए FM डाउनटाउन, मेरे यानी अमन सिंह के साथ। कहते हैं कि हमारा फेवरेट सॉन्ग इसलिए हमारा फेवरेट होता है क्योंकि उसके पीछे हमारी एक मेमोरी जुड़ी होती है, और वो मेमोरी ही क्या जो हमारे दीवार पे ना हो, है कि नहीं? तो आज ही अपने फेवरेट सॉन्ग को दीजिए एक ब्यूटीफुल ग्लास प्रिंटिंग फ्रेम का रूप, वो भी आपके फोटो के साथ, और हाँ, सबसे अफोर्डेबल रेट्स में। पर ये सब मिलेगा कहाँ? वहीं जहाँ से सब लेते हैं, प्रिंटेबिलिटी। प्रिंटेबिलिटी के इंस्टाग्राम पेज पर आपको इसके अलावा मिलेंगे पोस्टर्स, प्रिंटेड टैग्स और कस्टमाइजेबल स्टिकर्स और भी बहुत कुछ। तो अभी जाइए प्रिंटेबिलिटी के इंस्टाग्राम पेज printability.co और वहाँ पे ऑर्डर कीजिए अपना फेवरेट सॉन्ग का फेवरेट ग्लास प्रिंटिंग फ्रेम। और हाँ, इसे आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें और शॉपिंग करें प्रिंटेबिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम कर रहे हैं ऋतिक महाजन से रैपिड फायर। सो ऋतिक, क्या आप तैयार है रैपिड फायर के लिए?
मैं नर्वस हूँ लेकिन तैयार हूँ।
क्वेश्चंस काफी ज्यादा ट्रिकी हैं, सो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा आपको संभल के पैर रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, दिस और डैट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम?
ये बहुत ट्रिकी सवाल है। इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम, ऑल राइट। नेक्स्ट इज नो पोस्ट फॉर अ मंथ और नो जिम फॉर अ मंथ?
नो जिम फॉर अ मंथ।
फैंस आर ऑलवेज ऑन टॉप प्रायोरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। आपने दिन दोनों ही ब्रांड्स को प्रमोट किया हुआ है इनके साथ कोलैबोरेट करके, अब आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है, एम कैफीन और द मैन कंपनी?
एम कैफीन।
एम कैफीन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फेवरेट इन्फ्लुएंसर।
फेवरेट इन्फ्लुएंसर मेरा इस टाइम पे कोई भी नहीं है।
कोई भी नहीं है?
कोई भी नहीं है।
That's amazing or that's strange. All right, next is biggest competitor.
Biggest competitor जो भी millions में खेल रहे हैं, मुझे उनके बस पहुंचना है पास पास।
जो कि आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं।
जरूर।
आपको next question जो मैं पूछ रहा हूँ, उसमें आपको best to worst में arrange करना है कि सबसे अच्छी एक्टिंग स्किल्स किसकी हैं और सबसे बेकार एक्टिंग स्किल्स किसकी हैं। थ्री ऑप्शंस यू हैव, सलमान खान, शाहरुख खान, शाहिद कपूर।
बेस्ट शाहिद कपूर।
ओके।
और वर्स्ट में मैं सलमान सर को बोलूंगा।
ओके ओके, नेक्स्ट इज कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा?
दीपिका पादुकोण।
ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किल मैरी और डेट. सो योर ऑप्शंस आर जन्नत जुबैर, समीक्षा सूद और अवनीत कौर.
अवनीत कौर को मैरी,
ओके.
समीक्षा को किल,
ओके.
और जन्नत जुबैर को लास्ट ऑप्शन क्या था?
डेट.
डेट, या
ऑल राइट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड राउंड. व्हाट वुड यू डू इफ यू आर प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे?
आई विल चेंज द यू नो द रेप सीन विच आर गोइंग ऑन.
ऑल राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. ओके सो नेक्स्ट राउंड इज आपके फैंस ने और मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे लिसनर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मतलब इतने कि आई कैन टेल यू इन फिगर्स, बट फिर भी उनमें से बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चंस थे वो हमने इस एपिसोड में लिए हैं और उनमें से हम आपसे कुछ क्वेश्चंस आज पूछेंगे.
ओके
सो पहला क्वेश्चन, और जो ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मतलब मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी पूछा और आपके फॉलोअर्स ने भी ये चीज़ पूछी, और मुझे लगता है कि इस एपिसोड के अंदर आपको ये चीज़ आज क्लियर कर देनी चाहिए बिल्कुल पर्दाफाश टाइप कि क्या है सिचुएशन. आप मुझे लगता है आप क्वेश्चन समझ चुके हैं. सो क्वेश्चन इज आर यू सिंगल और नॉट?
आई एम सिंगल गाइस.
सो ऑल द गर्ल्स जो आप सुन रही हैं, आपने सुन लिया ध्यान से, ऋतिक ने कहा ही इज सिंगल. सो आप ट्राई कर सकती हैं, तैयार हो जाइए.
कोई भाव ही नहीं देता यार.
रियली?
हाँ.
ऐसा हो ही नहीं सकता है. आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन यू. ऑल राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वानी. वानी पूछ रही है आपसे एनी सेलिब्रिटी क्रश.
दीपिका पादुकोण.
दीपिका पादुकोण, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मानसी ने. मानसी पूछ रही है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम?
मैं चाय पी के मूवीज देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ.
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रीति ने. अब प्रीति पूछ रही है व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी?
चाइल्डहुड मेमोरी मेरी फेवरेट है कि हम घंटी बजा कर ना भाग जाते होते थे.
ओह सबकी चाइल्डहुड, मेरी भी सेम है.
अरे बहुत मजा आता था
जब हम भी स्कूल से आते थे, किसी का भी बेल बजा करके बस तुरंत भागो वहां से.
मजा आता था बहुत
बहुत ज्यादा मजा आता इस चीज में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट कंट्री अदर देन इंडिया. ये पूछा क्वेश्चन आयुष ने.
ओके तो आई वुड लाइक टू गो टू इटली.
ओके
तो वहां पे मेरे को बहुत चीजें एक्सप्लोर करनी है. वैसे तो बहुत सारी हैं बट लेट्स सी कहां पे जाऊंगा मैं.
ओके ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तन्वी ने, और तन्वी कह रही है चाय और कॉफी.
चाय
ऑलवेज फेवरेट.
और क्या.
राघव ने आपसे पूछा है नाइसेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड.
नाइसेस्ट और द मोस्ट यू नो, एक बस क्यूट क्यों हो, कैसे हो, आई डोंट नो, बस ये आता ही रहता है.
मैंने आपकी एक लाइव सेशन देखी थी इंस्टाग्राम पे जिसमें आप जितने भी लोगों को अपने लाइफ पे ले रहे थे,
हाँ जी हाँ जी,
सो एक ही चीज बार बार बोली जा रही थी कि आप बहुत क्यूट हो, आप इतने क्यूट क्यों हो, आप बहुत क्यूट हो, आप इतने क्यूट क्यों हो. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही कर सकता था राघव आपको कि नाइसेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऋतिक हैव एवर गेट इज क्यूट.
या
ओके आशु ने आपसे क्वेश्चन पूछा है टेल मी योर डार्केस्ट सीक्रेट.
डार्केस्ट सीक्रेट ओके तो मैं मतलब जब ऐसे वीडियोस वगैरह शूट कर रहा होता हूँ ना तो मैं बहुत बहुत गंदे फेस बनाता हूँ. जब मेरे से कोई शूट कोई लिया नहीं ना जाता ऐसे, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मैं बहुत गंदे फेस बनाता हूँ और वो ड्राफ्ट में सेव कर देता हूँ.
ओके मतलब वो सेव रहते हैं.
हाँ जी. और अगर मेरा फोन कोई देख ले ना वो उसी दिन मुझे अनफॉलो मारेगा, उसी दिन मुझे गालियां देगा कि भाई तू कर क्या रहा है ये.
काश ऋतिक आप स्टूडियो में होते और मैं आपके साथ खेल रहे होते हैं व्हाट्स ऑन योर फोन.
श्योर कभी जरूर खेलेंगे इन फ्यूचर जरूर.
बिल्कुल
मैं उस टाइम पे सारा कुछ क्लियर कर दूंगा बाय द वे.
ओह स्मार्ट, देखिए कितनी चालाकी दिखा रहे हैं ऋतिक कि आप लोगों को दिखाने से पहले ही वो सब कुछ क्लियर कर चुके होंगे.
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट हम कुछ ना कुछ तो रखेंगे इंटरेस्टिंग.
बिल्कुल. और मैंने सुना है ऋतिक आप बीट बॉक्सिंग भी कर लेते हैं.
जी बिल्कुल.
नहीं मैंने आपकी लाइव में ही देखा था.
जी हाँ मैं कर लेता थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी.
सो अगर आप कर सकें अपने फॉलोअर्स के लिए राइट नाउ.
या श्योर तो मैंने 3-4 बीट सीखी थी, तो उनको उसका मिक्सचर करके मैंने खुद से ऐसे फ्री टाइम में बैठ बैठ के ये खुद से सीख लिया। तो हेयर इट इज। बस
दैट वॉज अमेजिंग.
यार थोड़ा सा, बहुत 3 साल हो गए वैसे तो सीखे हुए, यूट्यूब से सीखा था ये।
अच्छा सो रितिक, एनी वर्ड्स फॉर FM डाउनटाउन लिसनर्स?
बहुत बहुत ज़्यादा प्यार सबको, और ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहो, बिकॉज़ अमन भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ट्रस्ट मी, वो बहुत मेहनत करते हैं। और ये एडिटिंग वगैरह आसान बिल्कुल नहीं होती, क्यों अमन भाई?
बिल्कुल सही कहा आपने ऋतिक. आप, मेरा तो खैर ऑडियो है, आपकी तो वीडियोस हैं.
जी बिल्कुल, बट ऑडियो में और मेहनत लगती है, इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल
हाँ
होती है। तो मैं तो बस यही बोलूँगा, आपको बेस्ट ऑफ लक, और आपकी फैम को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से।
सो ऑडियंस, ऋतिक के इंस्टाग्राम के लिंक, उनके यूट्यूब चैनल के लिंक, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं. आप जाइए और ऋतिक को फॉलो कीजिए. आपने मैक्सिमम कर भी लिया है, क्योंकि आपने, मैंने अब जो अपनी स्टोरीज लगाई थी उस पर आपने बताया मुझे. सो आप जा करके ऋतिक को फॉलो करें. और ये एपिसोड अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप ऋतिक के फ़ैन हैं, दैट्स वाई आप ये सुन रहे हैं. सो आप ऋतिक को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर चेक करें. ऋतिक यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हैं और गेम्स स्ट्रीमिंग भी करते हैं. सो आपको वो ज़रूर पसंद आएगा. तो आज मिस्टर टॉकी टॉक शो में हमने फीचर किया इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी एंड इन्फ्लुएंसर ऋतिक महाजन को. और भी आगे ऐसे इंटरव्यूज आते रहेंगे आपके लिए. सुनते रहिए FM डाउनटाउन, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए एपिसोड के अंदर एक नए गेस्ट के साथ.